खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। सो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से सीखना शुरू करें, आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में, ख़ासकर कल की इबादत जो यहाँ हमारे मुल्क में कल को एतवार होगा, तो उस इबादत को याद रखें। और मैं चर्च में कलाम सुनाऊंगा और फिर उसके बाद गालबन 50 से 60 लोग हैं जिनके लिए मैंने पाकिस्तानी खाना बनाया है, जिसमें मुर्गी का गोश्त और पालक और फिर दही वाली चटनी और चावल हैं। सो इस सारे प्रोग्राम को अपनी दुआओं में याद रखें। कम से कम 200 लोग होंगे, ताकि खुदा का कलाम जब सुनाया जाए तो बहुत से लोग बरकत पाएं। और खाना बहुत अच्छा बना है, इसलिए उसके लिए भी दुआ करें कि खुदावन सबको हज़म करने की कुव्वत और ताकत दे। आए हम दुआ करें। कादर मुतले खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, आए हुए तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, माओं के लिए। खुदावन खुदा, तेरे हम शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए जो खुदावन हम सब के पास मौजूद हैं। तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं जिन तक तेरा कलाम नहीं पहुंचा। खुदावन, तू अपना कलाम उन सब तक पहुंचाने की कुदरत और ताकत रखता है और तू अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। सो आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में सेफसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका दो बाप, उसकी 10वीं आयत। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि 10वीं आयत को मुकम्मल करें और पहली आयत से 10वीं आयत तक का ये हवाला पढ़ेंगे, और इसमें से तीन बातें जो 10वीं आयत है हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम क्यों ज़रूरी है, दूसरी बात दुआ करना, दुआ करने की क्या अहमियत है, तीसरी बात मुसीबत हमारी ज़िंदगी में क्या पैदा करती है। सो इसे पहले कि हम इन तीन बातों को सीखें, मेरे साथ इस हवाला को पढ़ें इफ़सियों दो बाप उसकी पहली आयत से। और यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस कहता है, और उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रफ्श पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के अरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबाई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। इन तीन पहली आयात में जो हमने बातें सीखी थी वो ये थी, पालूस कहता है कि तुम रूहानी तौर पर मुर्दा थे लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तुम ज़िंदा हुए। तुम रूहानी तौर पर खुदा के नाफरमान थे, यीशु मसीह के वसीला से उसने तुम्हें फरमाबरदारी के फर्जंद बनने का नाम और लकब बख्शा, और फिर तुम रूहानी तौर पर अबलीस के ग़ुलाम थे, उसने तुम्हें गुनाह की गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुड़ाया। सो ये पहली तीन आयतों में हमने ये बातें सीखी थी। और चौथी आयत में पालूस कहता है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो यीशु मसीह में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। चौथी आयत से सातवीं आयत तक हमने सीखा कि खुदा ने अपनी मोहब्बत से हमें यीशु मसीह में वो मकाम बख्शा जो सोने चांदी हीरे जेवरात या किसी और चीज़ से ख़रीदा नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ किस तरह ये मकाम, ये शनाख्त, ये बरकत हमें मिलती है, निजात, फजल और फिर खुदावंद यीशु मसीह में ये बड़ा हक, किस तरह? ईमान के वसीला से। पहली बात हमने सीखी थी खुदा की मोहब्बत, और फिर हम पर उसका फजल हुआ और हमें निजात मिली। और ये सारी बातें किस तरह मुमकिन हुई? ईमान के वसीला से। कि ईमान में आज हमारी रूहानी हालत क्या है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमारा आसमान पर एक मकान है जिसके बारे में यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को कहा था, जिसमें से हमने सीखा था कि यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और वापस आकर तुमको साथ ले जाऊँगा। सो ये है वो आसमानी मुकाम जहाँ पर हमारी हालत क्या है, खुदा के बेटे और बेटियाँ। इस ज़मीन पर हमारी शनाख्त क्या है, खुदावंद यीशु मसीह के मानने और उसकी इबादत करने वाले। सो इन सात चौथी आयत से सातवीं आयत में हमने ये बातें सीखी थी, और आठवीं आयत में हमने दुनिया में जो सबसे सादा पैगाम है जिसके बारे में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, उस पैगाम के बारे में सीखा था कि निजात, छुटकारा, आज़ादी, खुदा तक हमारी पहुंच, खुदा के साथ हमारी सुलह किस तरह होती है। तुमको ईमान के वसीला से, फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। सो हमें निजात तोहफे के तौर पर मिली, और ये अपने कामों से हमने हासिल नहीं की। क्या लिखा है? और ना ईमान के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। और दसवीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और यीशु मसीह में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आज हम इस आयत पर गौर करेंगे, दसवीं आयत पर, और इसमें से हमने क्या क्या सीखा था कि हम उसकी कारागरी हैं। पहली बात हमने सीखी थी, दूसरी बात हमने सीखी थी हम नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, पैदा हुए हैं नेक कामों को करने के लिए। इस तारीकी की दुनिया में नूर के फर्जंद होने के लिए हम बुलाए गए हैं। नूर के फर्जंद, नूर के फर्जंद क्या करते हैं? तारीकी की बातों को दूर करते हैं, जहालत की, बेवकूफ़ी की बातों को दूर करते हैं। तो आप सब की जिम्मेदारी क्या है? आप सब नूर के फर्जंद हैं, इसलिए हमें नेक अमाल करने के वास्ते, नेक काम करने के वास्ते यीशु मसीह ने मुकरर किया है। ये खिदमत ना सिर्फ पादरी साहब की, ना कि सिर्फ संडे स्कूल टीचर की, बल्कि हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम मसीह के लिए इस दुनिया को, जिसे खेत कहा गया है, उसके लिए काम करें, उसकी खिदमत करें, उसे अपना आका और मालक समझते हुए उसकी ताबेदारी करें। और ये बात हमने सीखी थी, और हमने सीखा था कि किस तरह करना है। हम काम करते हैं, हम बहुत दफ़ा मेहनत करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि वैसा ही मजाज रखो। मेरे साथ निकालें एक हवाला, फिलिप्पियों 2:5 कि हमें जो कुछ भी करना है, किस सोच से, किस ख्याल से, किस नज़रिए से, किस तरह करना है, क्योंकि सब ही काम करते हैं, सब ही काम करते हैं, कुछ रोध होकर, कुछ हंसी खुशी से, कुछ मजबूर होकर, कुछ शिकायत और तकरार के साथ। लेकिन यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि हम किस तरह उसकी खिदमत करें। यीशु मसीह ने ये बातें कहीं, और पालूस रसूल लिखता है फिलिप्पियों 2:5 में, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मसीह यीशु का मजाज कैसा था? सोचना कैसा था कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमें हर रोज़ ये बात अपनी ज़िंदगी में भी कहने की ज़रूरत है कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमें यूहन्ना की ज़िंदगी में ये बात सीखने की ज़रूरत है कि उसने ये अल्फाज कहे जो कि बहुत ही उम्दा अल्फाज हैं, ऐसा बयान दिया जो कि बहुत ही ताकतवर बयान था। और उसने क्या कहा जब उसने यीशु मसीह को देखा? उसने कहा कि ज़रूर है कि मैं घटूं और खुदावंद यीशु मसीह तू बढ़े। हमें हर रोज़ यसु मसीह की मानद अपनी सोच रखते हुए क्या करने की जरूरत है? कहें कि यसु मसीह जरूर है कि मैं घटूं और तू बढ़े। और यही बात यसु मसीह ने की कि यसु मसीह जो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर था, खुदा जैसी खुदा की कुदरत उसे हासिल थी, सब कुछ उसे हासिल था, लेकिन उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, खादम बना दिया। किस लिए? वो इस ज़मीन पर इसीलिए आया था कि खुदा बाप की मर्ज़ी पूरी करे। आप सब भी इस ज़मीन पर इसीलिए हैं कि खुदा बाप की यसु मसीह की मर्ज़ी पूरी करें। सो हमने क्या बात सीखी थी? कि नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिसमें हमने ये बात सीखी थी कि जो कुछ भी हम करें, चाहे काम, चाहे सोच, चाहे कोई अमल, चाहे कुछ भी करें, जो कुछ भी करें, हमने क्या सीखा था? बगैर तकरार और शिकायत के करें। ये मिजाज यसु मसीह हमसे चाहता है और यसु मसीह ने अपनी ज़िंदगी से हमें यह नमूना दिया है। सो ये बात हमने सीखी थी। ये हवाला आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, फिलिप्पियों 2 उसकी 14 आयत। ये बात हमने सीखी थी कि जो कुछ भी करें खुदावंद के लिए करें और बगैर शिकायत के करें। और फिर एक बात सीखी थी कुलसियों 3 उसकी 23 आयत में, जो कुछ करते हैं ये जानकर करें कि खुदावंद के लिए करते हैं, ना कि इंसानों के लिए। इसलिए यसु मसीह ने कहा है कि जब हम ये सब कुछ करेंगे तो दुनिया के लोग देखकर क्या कहेंगे? कि ये खुदावंद यसु मसीह के मानने वाले हैं, ये यसु मसीह की खिदमत करने वाले लोग हैं। ऐसा मजाज यसु मसीह हमसे चाहता है कि हर रोज़ हम इस्तेमाल करें, तभी इस दुनिया के लोग कहेंगे, जैसे हमने कल सीखा था, कि हम इस दुनिया का नूर हैं और हम उस नूर की मानद जमके के लोग देखकर हमारे आसमानी बाप की ताज़ीम, तमजीद, इज़्ज़त करें और उसके नाम को जलाल दें। सो ये बातें हमने सीखी थी। आज मैं चाहता हूँ कि इस बात पर गौर करें कि खुदा का कलाम हमें इसीलिए दिया गया है कि हम यसु मसीह की ज़िंदगी से, पालूस की ज़िंदगी से और दूसरे तमाम नबियों की ज़िंदगी से नमूना हासिल करें कि उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, उन्हों की ज़िंदगी में कौन सी वो बात थी, जो अहमियत थी, जिन्हें जिस बात ने उनको खुदावंद यसु मसीह के दिन ब दिन अच्छे मानने वाले बनाया और उन्होंने तारीख को बदल कर रख दिया। उनकी ज़िंदगियों से कैसे लोग बदले, कैसे यसु मसीह को उन्होंने माना और जाना। मेरे साथ इस हवाला को निकालें, कुलसियों, माजर चाहता हूँ, पहला थसलीकियों उसका 2 उसकी 13 आयत, के कलाम खुदा की हमें हर रोज़ ज़रूरत है। इन 3 को सीखेंगे। खुदा का कलाम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इस तरह होना चाहिए, हम इस तरह उसकी ज़रूरत को महसूस करें जैसा प्यासा पानी के लिए तरसता है, जैसे भूखा रोटी के लिए, जैसे आपको भूख लगती है तो आप चाहते हैं कि आपकी भूख जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, आप सैर हो जाए, आपका पेट भर जाए। सो पहला थसलीकियों उसका 2 उसकी 13 आयत में पालूस रसूल दुआ करते हुए, खुदा का शुक्र करते हुए इस बात को कहता है। 13 आयत में लिखा है, इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं, बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी करता है। पालूस रसूल शुक्र करता है खुदा का कि वो पैगाम जो उसने थसलीकियों की कलीसिया को दिया, उन्होंने उसे कबूल किया। इसलिए आपको हर रोज़ खुदा का शुक्र करने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम आपके पास मौजूद है। बहुत से ऐसे कबीले हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइबल नहीं। आप खुदा के बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए आप सबको, मुझको, कि हम सब के पास एक एक दो दो तीन तीन बाइबलें हैं। ज़रूरत है उसे पढ़ने की, जैसे यहाँ पर खुदा का बंदा पलूस कहता है कि खुदा का कलाम जानकर उसे कबूल करें और ईमान लाकर उसमें से बरकत हासिल करें। और दूसरी बात वो क्या कहता है, दुआ। दुआ इफ़सियों 3 बाप उसकी 19वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है। पालूस रसूल 20वीं आयत में कहता है, इफ़सियों 3 बाप उसकी 20वीं आयत में कहता है खुदावंद यसू और खुदा के बारे में, अब जो ऐसा कादर है, यानी कि खुदावंद खुदा जो कुदरत वाला है, कि उस कुदरत के मुआफिक जो उसने जो हम में तासीर करती है हमारी दरख्वास्त और ख्यालात से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दरख्वास्तों पर, हमारी मनाजातों पर, हमारी इल्तजाओं पर क्या लगाता है, कान लगाता है, क्योंकि वो कुदरत आला है और वो हमारी दुआओं के सबब से हमें जवाब देने की कुदरत और ताकत रखता है। सो दुआ मसीही ज़िंदगी में हर रोज़ ज़रूरी है, जैसे आप करते हैं सुबह को, जब भी मौका मिले खुदावंद का शुक्र करें, उसके हजूर झुकें कि आपके पास बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। और तीसरी बात, मुसीबत। मुसीबत, मुश्किल, परेशानी हमारी ज़िंदगी में क्या पैदा करती हैं, ये तमाम इम्तहान क्या पैदा करते हैं, कि हम मसीह में और ज़्यादा मजबूत हों, और ज़्यादा हमारा मजबूत ईमान मजबूत हो, और ज़्यादा हमारे ईमान को तरक्की मिले। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो मुसीबतें, जो दुख हम पर गुज़र रहे हैं, ये सब आरजी हैं, और इस जहां के दुख दर्द उस लायक नहीं जो जलाल हम सब पर ज़ाहर होने वाला है। इसके लिए हम हवाला देख सकते हैं रोमियो 8 बाप उसकी 18 आयत, 17 आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। पालूस कहता है, और अगर फर्जंद हैं तो वारस भी हैं, यानी खुदा के वारस और मसीह यसु के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। जब दुख उठाएंगे तो खुदावंद अपने जलाल में, अपनी हजूरी में हमें क्या बख्शेगा, इज्जत बख्शेगा। क्यों, पालूस कहता है ये 18वीं आयत में, क्योंकि मेरी दानिस्त में कहता है, मेरे सोचने के मुताबिक, मेरे इस सोचने के मुताबिक कहता है, मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपकी फिक्रें, आपकी परेशानियां, मेरी, हम सब की ये आरजी हैं, और ये इसीलिए हैं ताकि हम हर रोज़ अपनी मुसीबतों में दानियल और उसके शिगिर्द, उसके दोस्तों की तरह खुदा पर भरोसा करने वाले बने। दानियल ने भरोसा किया शेरों की मान में, खुदा ने उसे क्या किया, रहाई दी। उसके दोस्तों ने आग के दरमियान क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया। यूसुफ ने, जब वो कैद खाना में था, तो खुदा ने उसे कैद खाना से रहाई बख्शी और कैद से निकाल कर फराउन के साथ तख्त पर बिठा दिया। पतरस जब कैद खाना में था तो उसके पीछे जो कलीसिया दुआ कर रही थी, उसकी दुआओं के वसीला से कैद खाना के दरवाजे खुल गए। और ईमानदारों के मुसीबत, दुख, बहुत जितने भी हम सहते हैं, वो कुछ भी नहीं जो जलाल, जो नेहमत, जो बरकत, जो खुदा की हजूरी आप सबको और उन तमाम लोगों को मिलेगी जो यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं। क्योंकि ज़मीन पर पालूस रसूल की तरह हम सब कह सकते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा। आए हम दुआ करें और हर रोज़ खुदा का शुक्र करें उसके कलाम के लिए। दुआ करें कि खुदावंद हम सबको कुव्वत और ताकत दे और तमाम मुसीबतों में हमें हौसला दे ताकि हम तमाम आजमाइशों पर पूरे उतरने वाले बने। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से तमाम बहन भाइयों को बड़ी बरकत दे के तेरा कलाम और तुझसे दुआ और हर मुसीबत में खुदावन तुझे याद रखें कि तू इस काबिल है कि हमें निजात दे सके। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।